ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को आउटरीच देश के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। श्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका और यूक्रेन ने कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 15 देशों द्वारा यूक्रेन के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते के समापन के बाद हुआ। इसके दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास सहित सभी संभावित स्तरों पर सहयोग बढ़ेगा। हालांकि समझौते में यूक्रेन को विशिष्ट हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का कोई वादा नहीं किया गया है। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर लेकर विशेष विमान कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गया है। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा। मृतकों में सबसे अधिक 23 लोग केरल के, 7 तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3, ओडिशा के 2 और बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा हरियाणा के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल कुवैत में 5 अस्पतालों का दौरा कर घायलों से बातचीत की। 5 दिवसीय हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। दुनिया भर से लगभग 20 लाख लोग सऊदी अरब के मिना में एकत्रित हो रहे हैं। वार्षिक हज यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। इनमें से 1,40,020 यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए वहां पहुंच चुके हैं। इस साल सबसे ज्यादा 5,000 भारतीय महिला तीर्थयात्री महरम यानी बिना किसी पुरुष अभिभावक के हज करेंगी। भारतीय तीर्थयात्रियों को हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए सूचना और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। ऐप का नाम है NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर IPL मैचों के अनधिकृत प्रसारण और क्रिकेट तथा लोकसभा चुनावों को लेकर सट्टेबाजी सहित गतिविधियों में शामिल ऑनलाइन ऐप के कई परिसरों पर छापेमारी की है। मुंबई में कुछ लोगों और उनके स्थानों की भी तलाशी ली गई है, जिन्होंने प्रचार के लिए टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियों के माध्यम से अभिनेताओं को दी गई राशि का शोधन करने में मदद की थी। ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए की नकदी, बैंक खातों की जानकारी, डीमैट अकाउंट और लग्जरी घड़ियां जब्त की हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।